हमारे पास दो बात के लिए, दो बात कहने के लिए पूर्जे आए हैं। एक तो स्त्री शिक्षा के विषय में, स्वाभिमय विधवा उनके विषय में, और एक भगवान के प्रेम के विषय में। तो सार सार बात कही जाती है। करीब 10 बज गए तो शायद एक प्रकार से पूरे 11 बजे तक की थे आजकल, 10-5 मिनट अधिक हो जाए, 11 बजे जाए तो आप लोग क्षमा करेंगे मारो। आज जो है दिन बहुत शांति को है और खूब आनंद हो रहे है, सबके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, मानो कोई कृतकारी हो जाए। ये सब अपने ईश्वर की अपने विशेष दया है। ईश्वर की बिना दया के यहां मनुष्य आई कर सकता है? एक तो तीर्थ स्थान, एक समझो कि मुक्ति धाम, सात पूरी मुक्ति के देने वाली उसमें या एक पूरी है। इसमें मरने में भी माने इस धाम में आकर मरने से मुक्ति है और जीता हूं भी, बास करे जो आकर मरे। तो भगवान की बड़ी दया है और समय भी बहुत ही एक प्रकार से उत्तम बीते और बीत रहे है। अब समय जो है बहुत कम रह गए, इसलिए आपने सब कोई अपने कटिबद्ध होकर के चेष्टा करो साधन करने की, और महारा लोगों को भी यह कर्तव्य है कि एक प्रकार से जैसे नई नई बात आपको सुनाऊं, कुछ पुरानी भी कुछ नई। यूं तो जो गीता की बात है और ऋषि मुनियों की बात है वो कभी पुरानी होती ही नहीं, सदा नई रहती। ऐसी बात नहीं होती तो हम लोग रोज गीता का पाठ क्यों करते? किसी एक भाई ने किस सज्जन को कहा कि आप राम राम करते हो तो राम राम एक बार किया, दो बार किया, फिर रोज ही आपने राम राम क्यों करते हो? बोले तुम रोटी एक बार खाई, दो बार खाई, रोज क्यों करते हो? बोले रोटी जो वो तो हमारा जीवन है, प्राण है, जीवन कैसे? बोले मैं राम नाम बिना कैसे जीऊंगा, वो हमारा प्राण है। तो माता बहनों के विषय के मां ये बात कही जाती है। सुहागन माताओं के लिए भगवान ने बहुत छूट दी, इसलिए माता बहनों को ये विचार रखना चाहिए कि हमारा पति सदा कायम है, क्योंकि पति जो एक कायम है वही तो उसका उद्धार बहुत शीघ्र हो सकता है। और संसार में रह करके और संसार के विषय भोगों के मां रहता हुआ उसको कल्याण हो जाए। सीता जी जो है पति के साथ बनने गई किंतु इन्हीं वस्त्रों को पहन कर गई, जो गृहस्थाश्रम के बीच के मां जो राजाओं के पहनने के जो वस्त्र है, जिस समय श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाने लगे उस समय कैकेयी ने मुनियों के पहनने के जो बलकल के वस्त्र ला करके दिए, मृगशाला और बलकल के वस्त्र। भगवान राम और श्री लक्ष्मण ने खुशी के साथ उन वस्त्रों को धारण किया। सीता उन वस्त्रों को हाथ में लेकर के अपने पति भगवान श्री राम से कहने लगी कि महाराज मुनियों के से किस प्रकार से इन वस्त्रों को पहनती है, मुझको ज्ञान है। भगवान राम यद्यपि लज्जा की बात ही, किंतु अपने दुख समय जान करके लज्जा की परवाह नहीं करी और वस्त्र को लेकर के और सीता को पढ़ाने के वास्ते तैयार हुई। ये देख करके सब कोई अपने रोने लगे कि देखो ये क्या हो रहा है। उस समय में वशिष्ठ जी से नहीं आ गया, उन्होंने कहा रे कि दुष्टा क्या दशरथ के साथ दशरथ से जो तुमने दो वरदान मांगे हैं कि 14 वर्ष के लिए राम वन में जावे और भरत राज करें, उनके साथ में ये भी बात है क्या कि सीता जो है वो अपने बलकर वस्त्र पहन करके राम के साथ में वन में जाए। यदि ऐसा तुम्हारा वरदान नहीं है तो तुम्हारे को अपने लज्जा नहीं आती, जो सीता को जाकर तुम बलकर वस्त्र देती हो ये तो अपने पति की सेवा करने के वास्ते अपनी इच्छा से जा रही है, इसके लिए तो कोई तुम्हारा वरदान नहीं मांगा गया है। और फिर तुम एक प्रकार से थी ऐसा जो व्यवहार करती हो, तुम्हारे को लज्जा नहीं चाहिए। तो कहीं चुप हो गई और दशरथ जी और बशीर जी ने हुक्म कर दिया कि सीता इन्हीं वस्त्रों से भगवान राम के साथ में जाए और उन्हीं वस्त्रों से हो गई और भगवान के साथ में जाकर के पातिव्रत धर्म का पालन करके के और संसार की स्त्रियों को शिक्षा दी। वो तो स्वयं तो पतिव्रता थी, उनका जो पातिव्रत धर्म का पालन है संसार के कल्याण के लिए है। और सीता तो खुद जगत जननी ईश्वरी थी, उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं था। अनुसुया ने सीता को उपदेश दिया और देखकर ये कहा कि हे सीते, ये जो उपदेश दिया गया है वो एक प्रकार से संसार के कल्याण के लिए दिया गया है। तू तो साक्षात पतिव्रता है, तू तो ऐसी पतिव्रता है कि तेरा कोई नाम भी उच्चारण के लिए तुम्हारा पतिव्रता हो सके। तो पातिव्रत धर्म का उपदेश बहुत थोड़े में दिया गया है। पातिव्रत धर्म जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, पति की इच्छा की माफ करना ये पातिव्रत धर्म है। जब तक इच्छा का ज्ञान न हो तो पति का सिद्धांत समझ के उनके अनुसार चलना, और जब तक पति के सिद्धांत का भी ज्ञान न हो तो उसके संकेत के माफक चलना, जैसे कठपुतली आपने नाचती है और संकेत में नहीं समझे तो हुक्म के माफक चलना और उनकी सेवा करना। तुलसीदास जी सार रूप से कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत वचन मन पति पद प्रेम स्त्री के लिए एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम है कि मन से वाणी से शरीर से पति के चरणों के मां प्रेम करना। पुरुष के लिए धर्म के 10 लक्षण बदलाए, किंतु एक प्रकार से स्त्री के लिए एक ही बदलाया। कैसा वचन बोलना चाहिए कि सत प्रिय और हित का वचन पति के सामने सत वचन बोलना चाहिए और सत्यम प्रिय हितम से, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि सत प्रिय और हित की बात कहनी चाहिए, ये वाणी का तप है। तो स्त्री के वास्ते अपने पति के प्रति जो सत्य और प्रिय और हित और बिना जुड़ते वचन सुख करनी चाहिए। ये उसका धर्म बन गया। और व्रत क्या है? पुरुषों के वास्ते पांच व्रत है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, किंतु स्त्री के वास्ते उनमें उसने एक ही बताया। एक क्या?
उत्तम के सब समन मानी, सपने वो आन पूरा सा जग नानी,
जो उत्तम पतिव्रता होती है उनके मन के मां उसका पति जो है इस प्रकार से वास करता है कि मानो मेरे पति के सिवा और दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं। उसकी दृष्टि के बीच के मन अपना पति ये सब पुरुष है, इस प्रकार का वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। सपने में भी दूसरे पुरुष की स्मृति नहीं होती, किंतु जो दूसरी श्रेणी की पतिव्रता है वो भी पतिव्रता है, उसकी दृष्टि दूसरे पुरुषों पर चली जाती है, किंतु वो किस प्रकार से समझती है कि समझो कि उसके लिए कहा जाता है
मध्यम पर पति देखी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे,
इसकी श्रेणी की जो दूसरे नंबर की जो पतिव्रता है वो दूसरे पुरुषों को किस प्रकार से देखती है कि जो बड़े हैं अपने से उसको जन्म के देने वाले पिता के समान, और जो सामान्य अवस्था वाले हैं उनको अपने सहोदर भाई के समान, और जो छोटी अवस्था में लड़के हैं उनको अपने जन्मे हुए बच्चे के समान, क्योंकि सबके साथ में निज शब्द है, इस प्रकार से वो देखा करते। तो ये समझना चाहिए। तीसरी बात ये कि पुरुषों के वास्ते पांच नियम बतलाए, स्त्री के वास्ते एक ही। पुरुषों के वास्ते ये सो संतोष सतत स्वाध्याय इस उपेन्द्रानी नियम, बार भीतर की पवित्रता और जो कुछ मिल जाए उसे आनंद मानो, और अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना, और उस सुखों का मुक्ति के देने वाले जो पुस्तकों का स्वाध्याय करना और ईश्वर की भक्ति करनी, और स्त्री के लिए अपना पति ईश्वर के तुल्य है इस वास्ते ईश्वर की भक्ति की जो पति की भक्ति करनी, और ईश्वर की भी साथ न करे तो बहुत आनंद की बात है। एक ही धर्म, दस धर्मों में एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत, एक ही व्रत और एक ही नियम। क्या कि काय वचन मन पति पर प्रेम, काया काया से क्या कि शरीर से अपने पति की सेवा और हुक्म को पालन, और वचन से वो सतप्रिय हित का वचन कहना, और मन से अपने पति का ध्यान करना जैसे भगवान का भक्त भगवान का ध्यान करे, इस प्रकार से अपने पति का ध्यान करना, जैसे कहा ईश्वर परिधान, तो यहां अपने पति का ध्यान करना और साथ में भगवान का भी करें, सबका पति समझ करके गोपियां जैसा कहो भगवान ने कि आप तो सबके पति हो,
आपके पति
तो वह एक प्रकार से परम गति को प्राप्त हो जाए। माने दिखावापन को नहीं, ऊपर से तो पाती पर धारण है, अरे भीतरी के बीच के मां समझो कि आपने पति में प्रेम या पति को चिंतन ये सब नहीं है, केवल दिखाना मात्र को है, और भीतर में कपट है, तो कहे कि कपट को छोड़कर और भी जितना जो प्रकार का कपट है छल है उन सब जो श्री पाती पर धर्म को पालन के मां ऐसी बहुत सी कथा और मुझको हंसी, ये बड़ा रखना है विनोद के विनोद स्त्री के लिए। देखो अपने सुहाग भाग की इच्छा रखनी चाहिए, रखती है किंतु और विशेष रखनी चाहिए। ऐसी सुगमता और दूसरे साधन में नहीं है। जिस स्त्री का पति उसको कष्ट देवे तो भी उसका कभी अपमान नहीं करना, ये समझना चाहिए कि ये मुक्ति के देने वाले हैं, कष्ट को सहन करना चाहिए। और कोई मूर्ख जो स्त्री होती है वो एक प्रकार से कष्ट नहीं सहन कर सकती, अपने पति से विरोध कर लेती है, कोई आत्महत्या कर लेती है, तो वो एक प्रकार से घोर नरक को जाती है। केवल मैं नहीं कहूं, एक प्रकार से थी पार्थिवर धन से परमात्मा की प्राप्ति सहज हो जाती है, यह बात हमारे शास्त्रों में दिगं दिगं बतलाई है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि पुराणों के बीच के मां भी ये कथाएं आती है। करकल वैश्य की स्त्री पार्थिवर धन का पालन करके पति सहित परम गति को चली गई, जिसका नाम शुक्ला था। शुभा नाम की स्त्री जिसने पार्थिव धर्म का पालन किया, जिसके प्रभाव से पति सहित वो भगवान के परम धाम को चली गई। और अनुसुया की तो बात ही क्या है, अनुसुया ने पार्थिव धर्म का पालन किया, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश अंश रूप से उनके आकर के अवतार लिए। और भी बहुत सी स्त्रियां हुई, जैसे अरुंधति है, लोपा मुद्रा है, एक क्या महाभारत के बीच के माँ, और आपने पद्म पुराण में बहुत स्त्रियों की कथा आती है। विष्णु पुराण के माँ यह कथा आती है, विष्णु पुराण के छठे अंश की दूसरी अध्याय के बीच के माँ वेद व्यास जी जब आपने जलाशय में स्नान कर रहे थे तो बार बार ऐसा कह रहे थे, स्त्रियां धन्य, स्त्रियां धन्य। तो ऋषियों ने आकर के पूछा कि महाराज आप स्नान कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि स्त्रियां धन्य, स्त्रियां धन्य, तो इसको तात्पर्य आप बतलाइए। उन्होंने कहा कि जो आप मेरे पास आ रहे थे तभी मैं जान गया कि ये क्यों आ रहे हैं, तो आप जिस प्रश्न को लेकर के आ रहे थे वो बात ही मैंने उस समय में कही। स्त्रियां इसलिए धन्य है कि पुरुष जो है नाना प्रकार के आसन करके, समझो कि यज्ञदान तप करके या ईश्वर की भक्ति करके जिस चीज को पाते हैं, स्त्रियां केवल पार्थिवर धर्म के पालन से उसको पा लेती है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्रियां धन्य, उनके वास्ते बहुत छोट है। तो जिनका पति कायम है उनको इस बात को लेकर प्रश्न होना चाहिए कि वो अभी तो तुम्हारा पति कायम है, तुम्हारे लिए परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बहुत ही सरल है। अब पुरुषों के लिए कुछ कहा जाता है कि जैसे स्त्रियों का कर्तव्य है कि पार्थिव धर्म का पालन करना, ऐसे पुरुषों का कर्तव्य है कि एक नारी व्रत का धारण करना, जैसे श्री रामचंद्र जी ने एक नारी व्रत का धारण करके के और हम लोगों को ये शिक्षा दी है कि तुम लोग भी ऐसे ही करो। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो आचरण है वो आदर्श है, अनुकरणीय है। और पुरुषों का यह कर्तव्य बतलाया गया है शास्त्रों के मां कि स्त्री का सत्कार करना चाहिए, आभूषणों से और वस्त्रों से, और एक प्रकार से उसका आपने आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ये आदर और सत्कार है, एक प्रकार की स्त्री की पूजा मानी गई है, आदर और सत्कार है। जिस घरों के बीच में इस प्रकार से स्त्री नहीं पूजी जाती या न स्त्री का आदर नहीं होता है, उस घर की बड़ी भारी निंदा की गई है। और पुरुषों का ये कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करना, पुरुषों के लिए ये बात बतलाई गई है। स्त्री अपना आधा अंग है, जैसे हम अपने अंग की रक्षा करते हैं ऐसे अपनी भार्या की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री जो है अपने इस लोक और परलोक में मित्र है, इस लोक में भी और परलोक में भी, तो मित्र के साथ में जैसा व्यवहार किया जाता है ऐसा व्यवहार करना चाहिए। उसको भूल करके कभी गाली नहीं देनी, कभी मारपीट नहीं करनी चाहिए। अपने स्त्री को कभी हमने गाली दी हो ऐसे हमारे ख्याल नहीं है, और मारपीट की तो बात ही क्या है, ऐसा तो मौका ही क्यों आता था। तो आपसे मैं प्रार्थना करने, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करने का मेरा हक है, आप सब हमारे भाई हैं। जो अपने स्त्री को गालियां देता है, मारपीट करता है, शास्त्र भी कहता है और युक्ति भी कहती है ये न्याय नहीं है, और इस न्याय का फल जो है सो घोर नरक है। मैं तो ये कहूंगा कि इस प्रकार से अपने स्त्री को जो मारता फिरता है उसको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कड़ा शब्द में कहो तो वो कसाई, और नहीं तो एक प्रकार से वो पशु के समान है। अब विधवा स्त्रियों के लिए कहता हूं, विधवा माता को यह सुनना चाहिए कि मेरा जो पति है वो भगवान के परम धाम में चला गया, और मेरे पति को भगवान ने इसलिए बुलाया है कि मुझको मौका दिया है कि तुम पति के साथ में रहती तो गृहस्थाश्रम में फंस करके और बाल बच्चा पैदा कर करके और एक प्रकार से मुक्ति से वंचित रह जाते। तो यह बात सोच करके भगवान ने मेरे पति को तो बुला लिया और मेरे बुलाने की तैयारी। तो यही कहना चाहिए कि प्रभु मेरे पति को परम शांति मिले उसके लिए तो आप करेंगे, किंतु मुझको भी अपने धाम में जल्दी बुला लो। आप जो कुछ करते हैं सबके हित के लिए करते हैं, हम लोग जो जीव है प्राणी है नहीं समझते कि किसमें हमारा हित भरा हुआ है, और आप इस बात को समझते हैं। छोटा जो बच्चा है उसका फोड़ा हो जाता है, माँ उसको चिरा डालती है, उसके रोने की परवाह नहीं करती। लड़का इस बात को नहीं समझता है कि ये माँ हमारे को क्यों चिरा रही है, वो तो दर्द होता है रोता है। तो जो इस संसार के बीच में रोते हैं, भगवान जिसको अपने कष्ट देते हैं उससे लोग रोते हैं, वे मूर्ख हैं, भगवान के तत्वों को समझते नहीं कि भगवान जो कष्ट करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, जिसमें वास्तव में प्रणाम में हमारा अनिष्ट हो ऐसी बात भगवान कभी करते ही नहीं। जिसकी आत्मा में यह दृढ़ विश्वास है वो कभी कितना भी दुख आकर प्राप्त हो, कितना भी मन के विपरीत कोई क्रिया क्यों नहीं प्राप्त हो, वो कभी दुख नहीं करता, द्वेष नहीं करता, रोता नहीं। आप ख्याल करके देखिए, कहीं कोई लीला करने की बात तो दूसरी है, नहीं जो उस कोटि के महात्मा जो पुरुष होते हैं, सच्चे जो भगवान के भक्त होते हैं, वे रोया नहीं करते। तो माता बहनों को जो भी कुछ घटना प्राप्त हो अपने मन से विपरीत, मन के अनुकूल में तो सब खुश होते हैं, किंतु मन के विपरीत घटना के प्राप्त होने पर जो प्रश्न होते हैं वही धन्यवाद के पात्र हैं। तो आपके मन के कितना भी विपरीत अगर क्यों नहीं प्राप्त हो, आपको यह समझना चाहिए कि भगवान का विधान है, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है, ये भगवान अपने लीला कर रहे हैं, तो लीला को देख देख करके खुश होना चाहिए, देख देख करके खुश होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है तो भगवान ही जाने, किंतु भगवान का इसमें हाथ है इसलिए प्रसन्नता है। परीक्षा से अनिच्छा से कोई भी अपने मन के विपरीत कार्रवाई आकर प्राप्त हुए तो वो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है, उसको खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उसको देख करके मन में जो दुख होता है, ये समझो भगवान के भक्त का काम नहीं, भगवान के भक्त के मन दुख होता ही नहीं, और उसको बर्दाश्त करता है वो भी भक्त बहुत उच्च कोटि का नहीं है, दुख मान करके सहता है, और इसको सुनकर करके चित्त में प्रसन्नता होती है वह सच्चा भक्त है, और वो प्रसन्नता उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, हंसता हंसता एक मुग्ध हो जाता है, या हंसता हंसता मर जाता है तो मरने में मुक्ति है, और हंसता हंसता मुग्ध हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं कि प्रभु की इस प्रकार की लीला को देख करके जो हंसता ही रहता है, भगवान ऐसी लीला क्या करते हैं उसकी परीक्षा के लिए, किंतु जो भगवान का भक्त होता है वो इसमें फैल नहीं होता। आप देखिए प्रहलाद के साथ के मांस का पिता जो है कितना बुरा व्यवहार किया, उस पर कितने अत्याचार हुए, किंतु प्रहलाद ने भगवान का विधान मान लिया और भगवान का भेजा पुरस्कार मानकर उसका सत्कार किया, उस अत्याचार का सत्कार किया। इसी प्रकार से मीरा बहन ने अपने देवर का किया हुआ जो बर्ताव है, लोक दृष्टि में महान अत्याचार था, किंतु मीरा बहन उसको भगवान का भेजा पुरस्कार मान करके सदा खुश रहा करती थी। तो अस्त्रियों के मां मीरा की बड़ी प्रशंसा है, भगवान की उच्च कोटि की भक्त मानी गई हैं, उनके भजनों को भी लोग एक प्रकार से बढ़ा करते हैं और आदर किया करते हैं। और प्रहलाद का चरित्र तो प्राय लोग पढ़ते ही हैं और खुश होते हैं, तो इस तरह से भगवान प्राय अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा देते हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है बस उसको उसी वक्त परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और कहीं परीक्षा के बीच के वहां उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे भगवान और साधन करा करके उसका कल्याण करते हैं। विधवा माता बहनों का यह कर्तव्य है कि पति के मरने के बाद ऐस आराम स्वाद सुखिनी और विलासिता इन सब का त्याग कर देना चाहिए, कि जैसे पति के विदेश जाने के ऊपर स्वागत स्त्री कर देती है। अभिप्राय यह है कि स्वागत स्त्री को भी अपने पति के अनुपस्थिति में इन सब का त्याग कर देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। श्रृंगार करने वाली स्त्रियों के तो पास भी नहीं बैठना चाहिए, विधवा स्त्री को दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो वो एक प्लेग की बीमारी है। जो स्त्री भोग विलास के मारत है, श्रृंगार के मारत है, ऐस आराम के मारत है, ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, उसकी हवा जो है एक प्रकार से उसके लिए खतरनाक है। और ये समझना चाहिए कि तुम्हारे लिए सब कलंक, जैसे महात्मा लोग है सच्चे साधु जो व्रत त्यागी कंचन और कामनी का ऐस आराम का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे जो अपने व्रत जो महात्मा एकांत में रह करके अपना भजन ध्यान करते हैं, मान बढ़ाई और प्रतीक्षा को कुकर की विष्ठा के समान समझ करके जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे जो व्रत जो महात्मा पुरुष है मैं यदि ऐस आराम करे, स्वाद सोखी नहीं करे, श्रृंगार करे, तो उनके लिए वो जैसे कलंक है, इसी प्रकार से विधवा स्त्री के लिए वो सब कलंक है। विधवा स्त्री तो समझो कि एक गृहस्थाश्रम में रहकर के एक महात्मा ही है, जैसे महात्मा के दर्शन भाषण सबस वार्तालाप चिंतन से मनुष्य का एक कल्याण हो जाता है, उस कोटि का जो महात्मा जो अधिकारी पुरुष भगवान का भेजा हुआ समझो कि जिसको कारक पुरुष हम कहते हैं, उनकी बड़ी महिमा आती है। तो विधवा जो स्त्री है और अपने धर्म का पालन करने वाली है, उनके भी दर्शन से, वार्तालाप से, चिंतन से, उनके चरणों की रस से एक प्रकार से मनुष्य के पापों का नाश होता है। वह एक प्रकार से थी साध्वी है, वह एक प्रकार से थी सती है, वह एक प्रकार से थी समझो कि अपने साधनी कहो या अपने महात्मा कहो, वह उस कोटि की स्त्री है। विधवा स्त्रियों से तो लोग जो घृणा करते हैं वे मूर्ख हैं। हर एक का मनुष्य का आदर करना चाहिए। ऐसी स्त्री का आशीर्वाद मिल जावे, वरदान मिल जावे, तो एक प्रकार से थी वो वरदान सिद्ध हो सकता है, और वो साप दे देवे तो उसका विनाश हो सकता है। सुहागन जो स्त्रियां हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि आपके धर्म में रहने वाली जो विधवा स्त्री है उसकी सेवा करनी, और उसके तपस्या के बीच के मन और ईश्वर की भक्ति में बाधा न आवे, इसके लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। ऐस आराम और भोग उसको नहीं भुगताना। बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया गहना विधवा स्त्री के लिए ये जो श्रृंगार है ये उसके वास्ते कलंक है। यदि घरवाले मूर्खता के कारण उसको खाने के लिए माल मलिदा देवे, खाने के लिए समझो कि मेवा मिष्ठान देवे, तो विधवा स्त्री का यह कर्तव्य उसका कतई त्याग कर देना चाहिए। बोलो एक प्रकार से आप मेरा इसमें क्या हित सोचते हैं, मेरे लिए तो ये सब कलंक है। तुलसीगत रामायण के अयोध्या कांड के बीच के मां